मतदाता बनना हुआ आसान। कैसे? हरियाणा की मतदाता सूची के संशोधन का कार्य 2 से 16 अगस्त तक चलेगा। कोई भी पात्र नागरिक जिसकी आयु 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष या इससे अधिक है और वह मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है, वह अपना वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैसे?
वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसी प्रकार फॉर्म 6 भरकर संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय अथवा बूथ लेवल अधिकारी के पास प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा मंत्रिमंडल ने दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के अनुसार राज्य सरकार के 2016 से पहले और 2016 के बाद सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन को स्वीकृति दी है। संशोधन के अनुसार अब 2016 से पहले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के लिए मौजूदा मूल पेंशन या पारिवारिक पेंशन को 2.81 के कारक से गुणा करके संशोधित किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से हरियाणा सिविल सेवा न्यायिक शाखा और हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2023 की गुणन कारक तालिका के अनुसार उनके वेतन को नोशनली निर्धारित करके पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन को संशोधित किया जा सकता है। 2016 के बाद सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के लिए पेंशन गणना हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियम 2016 के उपनियम 34 के प्रावधान के तहत होगी। इसके अलावा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार पेंशन व पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त राशि पर महंगाई राहत स्वीकार्य होगी। मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रूपये होगी। जब भी महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% बढ़ेगा और ग्रेच्युटी की सीमा में 25% की वृद्धि की जाएगी। पेंशन संवितरण प्राधिकारी पहले से भुगतान की गई अंतरिम राहत को समायोजित करने के बाद 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन के बकाया की गणना और संवितरण करेंगे। हरियाणा मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों अर्धसैनिक कर्मियों के युद्ध में हताहत हुए 14 आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रदान करने को मंजूरी दी है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हालांकि नीति के तहत वो नौकरी लेने के लिए पात्र थे, लेकिन हरियाणा सरकार की अनुकंपा नीति से अनभिज्ञ होने या उस समय नाबालिग होने के कारण उन्होंने 3 साल की समय सीमा के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया, इसलिए ये नियुक्तियां नीति में समय सीमा में छूट देकर की जा रही हैं। प्रवक्ता ने बताया कि इन 14 आश्रितों में से 2 को समूह ख और 12 को समूह ग पदों पर नियुक्ति दी गई है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति 2022 के खंड 2.1 और 2.2 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे सामान्य आवासीय भूखंड वाली लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों के समान आवासीय भूखंड वाले घटक के तहत क्रय योग्य विकास अधिकार की अनुमति दी गई है। इस संशोधन से नई नीति के अनुसार कॉलोनियों और सामान्य आवासीय भूखंड वाली कॉलोनियों के बीच समानता लाने के उद्देश्य से क्रय योग्य विकास अधिकार के माध्यम से अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात के आवंटन की अनुमति दी जाएगी। नए प्रावधानों के तहत पहले दिए गए अतिरिक्त 0.25 अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात को हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के अनुसार आवासीय भूखंड पर क्रय योग्य अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात द्वारा पूरा किया जाएगा। संशोधन के अनुसार क्लोनाइजर को अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात के मानदंड के भीतर समूह आवास भूखंड पंक्ति आवास आदि जैसे उपयोगों के लिए आवासीय घटक आवंटित करने की स्वतंत्रता होगी। फरीदाबाद के जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने नए विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दौरान कम से कम 5 पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना अनिवार्य कर दिया है। विश्वविद्यालय ने अपने पोर्टल पर ऐसा प्रावधान किया है जहां विद्यार्थी अपने पौधारोपण के प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। कुलपति प्रोफेसर सुशील कुमार तोमर ने हरियाली पर्व के 3rd संस्करण के शुभारंभ पर यह जानकारी दी। मुख्य अतिथि हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेणु भाटिया ने पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। कुलपति ने बताया कि पर्यावरण विज्ञान विभाग पौधारोपण की प्रगति की निगरानी करेगा। छात्रों को अपने द्वारा लगाए गए पौधों की वृद्धि के साक्ष्य के रूप में जियो टैग की गई तस्वीरों सहित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।